भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 29 पृष्ठ संख्या 201। मेरे पीछे बोलिए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं स्वर्दं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं शरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। शब्दार्थ बोलिए। भोक्तारं भोगने वाला, भोक्ता यज्ञ, यज्ञ तपसां तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदम उपकारी, सर्व समस्त भूतानां जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझको कृष्ण को शांति भौतिक यातना से मुक्ति ऋक्षति प्राप्त करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। मेरे साथ बोले सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाते सपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वान सुते प्रणमामि हरि वांछा कल्प तरुण्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हाँ, श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में गीता के तीन शांति सूत्र बतला रहे हैं, शांति प्राप्त करने के जो शांति की योजनाएं आजकल बन रही हैं वो सफल नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान ने पहले से ही शांति का फार्मूला बतलाया है। क्या है शांति का सूत्र, क्या है? सबसे पहला सूत्र है भगवान को जानना। क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या के भोक्ता हैं कौन? श्री कृष्ण। और दूसरा सूत्र क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण जीवों के परम नियंता कौन है? श्री कृष्ण है। और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के परम हितैषी कौन है? श्री कृष्ण है। जो तीन बातों को जान लेता है कृष्ण के बारे में, ज्ञात्वा माम शांतिं दिच्छति, तो उसको शांति प्राप्त होती है, अन्यथा शांति नहीं प्राप्त हो सकती, अशांति ही अशांति है। और शांति का शब्दार्थ प्रभुपाद ने क्या लिखा है? भौतिक यातना से मुक्ति। भौतिक यातना से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कृष्ण को तीन प्रकार से ना जाना जाए, नहीं तो यातना ही यातना मिलती रहेगी, कोई हल नहीं है। भौतिक यातनाओं से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। तीन बातें जानना आवश्यक हैं कृष्ण के बारे में। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। सारे बद्ध जीव इस भौतिक संसार में जितने भी बद्ध जीव जिनके पास भौतिक शरीर है, जिन्होंने भौतिक शरीर में जन्म लिया है, वे सब शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मतलब भौतिक यातना से छूटना चाहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इस बात को जानने का उपाय क्या है? कृष्ण से ही जाना जाए। कृष्ण ही जानने वाले हैं और कृष्ण ही बताने वाले हैं। कृष्ण से ही कोई व्यक्ति जान सकता है, जो भगवत गीता में कृष्ण ने ये बातें कही हैं। और कृष्ण की शिष्य परंपरा से जाना जा सकता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। हाँ, मानवीय कर्मों के भोक्ता। भगवान कहते हैं यज्ञ तपस्या के भोक्ता, और प्रभुपाद जी कहते हैं मानवीय कर्मों के भोक्ता। मतलब यज्ञ और तपस्या ये मनुष्य के जीवन में ही होते हैं। मनुष्य के जीवन में अगर यज्ञ तपस्या नहीं है तो मनुष्य के जीवन का कोई मतलब नहीं है। पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में चार चीजें सामान्य हैं, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, है ना। बाकी मनुष्य के जीवन में ही विशेषता है क्या? यज्ञ और तपस्या। पशु के जीवन में कोई यज्ञ नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, है? तो मानवीय कर्म है। धर्मो ही एको नराणाम विशेषो, मनुष्य में धर्म ही एकमात्र विशेष है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान है, है? तो धर्म का मतलब क्या है? यज्ञ, तपस्या, दान, ये जो कार्य हैं ये धार्मिक कार्य हैं। मनुष्य के लिए जो उचित कार्य हैं ये हैं। तो प्रभु लिखते हैं कि शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मतलब व्यक्ति को यज्ञ और तपस्या ये कर्म करने चाहिए, किस लिए? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना, तब शांति प्राप्त होगी। आगे प्रभु लिखते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। मतलब दूसरा सूत्र, सर्वलोक महेश्वरम। अगर कृष्ण सब जीवों के परम नियंता हैं तो मनुष्य को क्या करना है? हर चीज भगवान की सेवा में लगाए। इसका यह मतलब है। दूसरा सूत्र का मतलब यही है कि हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाओ। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव और ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेतांशुतर उपनिषद 6-7 में कहा गया है, क्या? तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, भगवान को कहा गया है, माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। तो जो लोग स्वतंत्र ईश्वर बनना चाहते हैं उनका क्या हाल होता है? माया उनके ऊपर नियंत्रण करती है, माया नियंत्रण करती है। क्यों? भगवान माया के स्वामी हैं, प्रकृति के स्वामी हैं, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यस्ति या समस्त रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। क्या समझे? ना तो व्यस्ति रूप से शांति मिलेगी, ना समस्त रूप से शांति मिलेगी। मतलब व्यस्ति रूप से शांति कि मतलब आपको अकेले शांति प्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं व्यस्ति रूप से शांति। और समस्त रूप से शांति मतलब आपके पूरे परिवार को या आपके पूरे समाज को या पूरे शहर को या पूरे देश को शांति प्राप्त हो जाए तो उसको समस्त शांति कहते हैं। तो ना तो इस प्रकार की शांति हो सकती है, है? और ना ही उस प्रकार की शांति हो सकती है, किसी प्रकार की शांति नहीं प्राप्त की जा सकती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है, भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो ये दूसरा सूत्र है लोक महेश्वरम। इसमें किसी को भी कृष्ण के समान या कृष्ण से बढ़कर के नहीं समझना, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, कोई भी हो कृष्ण के समान नहीं है ना कृष्ण से बढ़कर के हैं। अगर समझा तो फिर शांति नहीं मिलेगी, तो फिर भौतिक यातनाओं से छूट नहीं पाओगे। अगर समझा कि शंकर ब्रह्मा भी जो है कुछ है, कृष्ण के समान हो सकते हैं, या कृष्ण के समान थे या कृष्ण के समान हो जाएंगे तो फिर भौतिक यातना से नहीं छूट पाओगे। अगर भौतिक यातनाओं से मुक्त होना है तो ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण के समान शंकर ब्रह्मा कोई भी देवता नहीं है, फिर साधारण जीवों की बात ही क्या है, है? ना कोई हुआ है और ना कोई होगा कृष्ण के समान, ये है कृष्ण भावनामृत। हाँ अच्छा, आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की जैसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना में पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंत रूप में ईश्वर का नित्य दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रकट है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं इच्छा और क्रोध के प्रभाव को जीतना है, तो यह 28वें श्लोक में था, विगत इच्छा भय क्रोध हो यहाँ सदा मुक्त इच्छा, तो वो बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यही जीवन की परम सिद्धि है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो अंत में जो प्रभुपाद ने बताई है ये बात बड़ी मार्मिक है। क्या प्रभुपाद कहते हैं कि अष्टांग योग के जो आठों अंग हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अष्टांग योग के आठ अंग जो है, देखिए कितनी ऊंची बात है, अष्टांग योग के आठ अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, आठों अंग क्या है, भक्ति योग में प्रस्तावना स्वरूप है। सोचो भक्ति योग में प्रस्तावना है, ये भक्ति योग की प्रस्तावना है, मतलब भक्ति योग बहुत ऊंचा है, है? अष्टांग योग में आठों के आठों अंग जो है भक्ति योग के सामने क्या है, बहुत ही शुरुआत की चीजें हैं, भक्ति योग बहुत आगे हैं, है ना? क्योंकि प्रभु लिखते हैं क्योंकि केवल इसी से मनुष्य पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है, यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये भगवत गीता के पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसको श्रील प्रभुपाद सदा उद्धृत किया करते थे तथा उन्होंने इस श्लोक को भगवत गीता का शांति सूत्र कहा है। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं को सदा और सर्वत्र भय बना रहता है। भगवत गीता का विषय उन्हीं लोगों के लिए है जो इस सत्य को अच्छी प्रकार समझ चुके हैं। क्या सत्य, कौन सा सत्य है अच्छी प्रकार से समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जीवात्माओं को सदा और सर्वत्र भय बना रहता है। सदा और सर्वत्र, सर्वत्र माने हर जगह, हर समय और हर जगह भय बना हुआ है हर जीव को। प्रत्येक जीव को प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय भय बना हुआ है। इस सत्य को जानना जरूरी है। अन्यथा इस श्लोक में शांति की कोई बात ही नहीं होती। शांति का मतलब क्या है? भय से छुटकारा। क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने शांति की बात कही है, इसका अर्थ है कि इस जगत में कोई भी शांत नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं है तथा हमें सभी प्रकार से शांति मिल रही है। अगर आप पूछोगे क्या हाल चाल है तो कहेंगे बहुत अच्छा हाल है। जिससे पूछो वही कहेगा बहुत अच्छा हाल है। आपको शांति मिल रही है? हाँ, बहुत शांति मिल रही है हमको। जिससे पूछो वही जवाब देता है क्या कि कोई कष्ट नहीं है, हमें सभी प्रकार से शांति मिल रही है। परंतु ये एक अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। जब उनके सामने मृत्यु आती है तो वे भयभीत होते हैं। अब मृत्यु का बात ही सामने, ये मृत्यु प्रतिदिन उनके सामने किसी ना किसी रूप में आती है, रोज आती है। मौत रोज आती है उनके सामने किसी ना किसी रूप में। जैसे सड़क पर निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं तो ट्रकों और अन्य वाहनों को देखकर भयभीत हो उठते हैं। ट्रक के रूप में मौत आती है सामने, तब कैसा लगता है? जब तक ट्रक सामने नहीं आता है तब तक कहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, कोई डर नहीं है। जैसे ट्रक आता है सामने तो फिर भय लगता है। इसके अतिरिक्त अन्य जानवरों, सर्प आदि कीड़ों और आतंकवादी मनुष्यों से भी उन्हें भय मिलता रहता है। जब वे प्रातःकाल जागते हैं तो भय के कारण ही सैया छोड़ते हैं। क्यों? बिस्तर से क्यों उठते हैं? डर है, डर लगता है। भय के कारण ही स्नान करते हैं और भय के ही कारण भोजन करते हैं और भय के ही कारण अपने व्यापार का कार्य करते हैं। उन्हें व्यापार में अपने सेवकों से भय रहता है, इसलिए उन्हें वेतन देते हैं। तनख्वाह क्यों देते हैं नौकर को? डर है। उन्हें अपनी पत्नी से भय रहता है, इसलिए उसकी इच्छाओं के अनुसार सभी कार्य करते तथा वस्तुएं लाते रहते हैं। पत्नी से भी डर है, यही अज्ञान है। वे अपने को सुखी तथा शांत समझते हैं जबकि उनके जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के दुख तथा भय आते रहते हैं। यद्यपि ऐसी स्थिति में वे कुछ इंद्रिय तृप्ति का सुख अनुभव करते हैं। हाँ, कुछ इंद्रिय तृप्ति का भी अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं। परंतु ये सुख शास्त्रों के अनुसार कैसा है? रेगिस्तान में प्यासे मनुष्य के लिए जल की एक बूंद के समान है। आपको बहुत प्यास लगे और कोई पानी की एक बूंद दे तो कैसा लगेगा? क्या? कुछ नहीं है ना। गीता में भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। अनेक विद्वान और शिक्षित लोग शांति का उपाय खोजते हैं तथा ऐसे तथाकथित विद्वान तथा शिक्षित लोग शांति का नोबेल पुरस्कार भी पा लेते हैं। परंतु उनके उपायों से मानवता में शांति की स्थापना तो नहीं होती बल्कि और अधिक अशांति फैल जाती है। ये उसी प्रकार है जैसा कि भागवत में कहा गया है, अंधा यथा अंधे रूप नियमाना, अंधे लोग अंधों का मार्गदर्शन करते हैं तथा स्वयं भी और अन्यों को भी कुएं में गिराते हैं। कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को अगर रास्ता दिखलाए तो क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? खुद भी कुएं में गिरेगा निश्चित रूप से। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, कुएं में गिरेगा खुद और उनको भी गिराएगा, है ना। श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में जो शांति प्राप्त करने की विधि प्रदान की है वह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी अंधे का मार्गदर्शन कोई आंख वाला व्यक्ति कर रहा हो। तो गीता में है जो मार्गदर्शन वो वैसा है, दृष्टि प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त समस्त जीव उनकी माया के अधीन है तथा माया में अंधे हैं। शांति प्राप्त करने की विधि कुछ मूर्खों ने गीता सार के नाम पर अपने व्यर्थ की कल्पनाओं से इस प्रकार बनाई है। क्या क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ, जो कुछ हो रहा है सो ठीक हो रहा है, तथा जो कुछ होगा सो ठीक होगा। ये है गीता सार। इस प्रकार का ज्ञान तमोगुणी है जो पशुओं के अंदर भी होता है कि नहीं? पशु भी इतना जानते हैं। हाँ, जिसे अज्ञान कहते हैं, दुष्ट लोग इस प्रकार का ज्ञान गीता के नाम पर फैला रहे हैं तथा लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कभी कभी खरगोश किसी शेर को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या समझे? खरगोश शेर को देखकर के आंखें बंद कर लेता है और क्या कहता है? जो हुआ सो ठीक हुआ, जो होगा सो ठीक होगा। वो गीता सार, वो भी गीता सार जानता है। खरगोश आंखें बंद कर लेता है शेर के सामने और सोचता है जो हो रहा है तो ठीक हो रहा है, जो होगा तो ठीक होगा, है? तथा सोचता है कि मुझे कोई भय नहीं है, इस प्रकार वह शेर के द्वारा मारा जाता है। उसी प्रकार अज्ञान में कोई सोचता है कि जो कुछ हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो कुछ होगा सो ठीक होगा, तथा जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ। तो उसके सोचने से तो ऐसा नहीं होगा। जब तक व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाकर हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं करता तब तक शांति कैसे मिल सकती है? शिला प्रभुपाद के शब्दों में यह ज्ञान जनित सुख है जिसमें व्यक्ति अपने को झूठ मूठ सुखी समझता है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय क्रियाओं के भोक्ता हैं। ये ज्ञान परम शांति का सरल मार्ग है। चूंकि ये श्लोक शांति प्राप्त करने के तीन सूत्रों का वर्णन करता है, पहला भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात श्री कृष्ण समस्त यज्ञ तथा तपस्या के भोगी हैं, मनुष्य नहीं। क्या समझे? शांति का पहला सूत्र क्या है? मनुष्य नहीं है यज्ञ और तपस्या का भोगी, यज्ञ और तपस्या के भोगी कृष्ण है शांति प्राप्त करने के लिए। दूसरा सूत्र क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात श्री कृष्ण समस्त लोगों तथा देवताओं के महाप्रभु हैं श्री कृष्ण। और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात समस्त प्राणियों के मित्र श्री कृष्ण ही हैं। हाँ, तो सर्वप्रथम सूत्र के अनुसार मनुष्य को अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए, ठीक है? पहला सूत्र क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इसका मतलब सब कर्म कृष्ण की सेवा में अर्पित करो। मनुष्य के जीवन में यज्ञ तथा तपस्या अनिवार्य है। यज्ञ के विषय में भगवान कहते हैं कि नायम लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम, अर्थात यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ना तो इस लोक में सुख है, फिर परलोक में कैसे होगा? श्री कृष्ण को यज्ञों का भोक्ता समझने का अर्थ यही है कि श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि मानव अपने जीवन में यज्ञ को अनिवार्य समझे। श्री कृष्ण समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जितने प्रकार के यज्ञ अनेक देवताओं के नाम से होते हैं उन यज्ञों में भी श्री कृष्ण का ही पूजन होता है। लगता है कि दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा हो रही है, लेकिन वास्तव में उन देवताओं की पूजा नहीं हो रही। किसकी पूजा हो रही है? कृष्ण की पूजा हो रही है ना? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जो जल है वो लगता तो है कि पहाड़ों में गिर रहा है, जंगल में गिर रहा है, नदियों में गिर रहा है, लेकिन वास्तव में कहाँ जा रहा है? समुद्र में। आकाश से गिरा हुआ जो पानी है लगता है कि मैदान में, पहाड़ में और जंगल में और नदियों में गिर रहा है, लेकिन कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। उसी प्रकार से लगता है कि दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा हो रही है, लेकिन वास्तव में किसकी पूजा हो रही? कृष्ण की पूजा हो रही है। हाँ, इसका अर्थ ये भी है कि जितने प्रकार के यज्ञ अनेक देवताओं के नाम से होते हैं, उन यज्ञों में भी श्री कृष्ण का ही पूजन होता है। यद्यपि इस बात को अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, यहाँ तक कि कभी कभी देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जब ब्रज में प्रतिवर्ष की भांति इंद्र का यज्ञ हो रहा था, तो इंद्र अपने आप को इस यज्ञ का भोक्ता समझ बैठा था। इंद्र सोच रहा था कि मेरी पूजा हो रही है, तथा ये भूल गया था कि परमेश्वर इस यज्ञ के भोक्ता है और वो तो केवल माध्यम है। इंद्र भूल गया कि मेरे माध्यम से कृष्ण की पूजा हो रही है। इंद्र सोचने लगा कि मेरी पूजा हो रही है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। क्या समझे? इंद्र का यज्ञ क्यों बंद करवाया? क्योंकि इंद्र समझ रहा है कि मेरी पूजा हो रही है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि टैक्स कलेक्टर, सरकार का जो टैक्स लेने वाला आदमी है, अगर वो टैक्स लेकर के सरकार को जमा ना करे, अपनी जेब में रखे, तो सरकार का वो अपराधी होता है ना, सरकार के द्वारा दंड पाता है। उसी प्रकार से इंद्र भी जो ना कृष्ण के द्वारा दंडनीय है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरी पूजा हो रही है, जबकि हो रही कृष्ण की पूजा है ना। इंद्र के नाम से जो पूजा हो रही है वो वास्तव में इंद्र की पूजा नहीं है, कृष्ण की पूजा है ना। तो इंद्र ने समझा कि मेरी पूजा हो रही है, तो कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और किसकी पूजा करवाई? गोवर्धन की पूजा करवाई। क्यों? गोवर्धन गिरिराज श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं, अतः उन्होंने इंद्र के समान ऐसी भूल नहीं की कि वे यज्ञ के भोक्ता हैं। गोवर्धन की पूजा हुई तो गोवर्धन ने ये नहीं समझा कि मेरी पूजा हो रही है। अतः यद्यपि गिरिराज के लिए ब्रजवासियों ने यज्ञ किया था, परंतु उस यज्ञ में जितनी भोजन सामग्री गिरिराज को अर्पित की गई थी वह गिरिराज नहीं वरन कृष्ण ने ग्रहण, किसने ग्रहण की सब भोग सामग्री? कृष्ण ने, कृष्ण ने ग्रहण की। और कृष्ण ने कहा कि मैं गिरिराज हूँ, कृष्ण ने ये कहा कि गिरिराज मैं हूँ, लेकिन कृष्ण स्वयं जो है भोजन खाते हैं, है ना। श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ बंद करवाकर तथा गिरिराज का यज्ञ कराकर इंद्र को ये दिखाना चाहा था कि यज्ञों के असली भोक्ता इंद्र नहीं वरन श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ने इंद्र का ये अभिमान नष्ट कर दिया कि वह यज्ञ का भोक्ता है। जिस प्रकार देवतागण अपने को यज्ञ भोक्ता समझने की भूल कर बैठते हैं, उसी प्रकार यज्ञ करने वाले मनुष्य भी जब देवताओं को यज्ञ भोक्ता समझने लगते हैं तो उन्हें भी संसार बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। क्या समझे? ये भी अपराध है, देवताओं की ओर से भी अपराध होता है अगर वो समझते हैं कि हमारी पूजा हो रही है, और मनुष्यों की ओर से भी अपराध होता है जब वो समझते हैं कि हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, है ना। अतः इस श्लोक के अनुसार शांति नहीं प्राप्त होती, ऐसे लोग देवताओं के भक्त कहलाते हैं। क्या समझे? ऐसे लोग देवताओं के भक्त कहलाते हैं, ऐसे लोग देवताओं के भक्त कहलाते हैं और उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं। हाँ, क्या समझे? उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं, भगवान के धाम में नहीं जाते हैं। हाँ, वे कभी भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी सभी प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? हरि कीर्तन। क्या? हरि कीर्तन, जिसकी संतुति इस कलयुग के समय में की गई है। हरि कीर्तन के भी दो रूप हैं, दो रूप, पहला हरि नाम कीर्तन और दूसरा हरि गुण कीर्तन। हरि नाम कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में होता है तथा हरि गुण कीर्तन श्रीमद् भागवत के रूप में होता है। जब व्यक्ति हरि नाम कीर्तन से शुद्ध होता है तब वह नाम संकीर्तन यज्ञ के साथ साथ गीता तथा भागवत के ज्ञान यज्ञ के प्रति आकर्षित होता है। गीता तथा भागवत का ज्ञान यज्ञ सभी प्रकार के यज्ञों में श्रेष्ठ है, जिसके विषय में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मतलब गीता और भागवत की चर्चा करते हैं जहाँ, वहाँ वहीं पर मैं रहता हूँ। अर्थात जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर रहता हूं। हाँ, प्रथम सूत्र में कहे गए यज्ञ तथा तपस्या में सिद्ध, यज्ञ के विषय में तो चर्चा हुई, अब तपस्या के विषय में हम विचार करेंगे। यज्ञ और तपस्या ये दोनों मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य हैं, क्या समझे? यज्ञ और तपस्या दोनों आवश्यक है। अतः श्री कृष्ण भगवद्गीता के अंत में कहते हैं क्या, इदम तेना तपस्काय, अर्थात ये भगवद्गीता उसे नहीं सुनानी चाहिए जो तपस्वी नहीं है। तपस्या का अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहन करना। श्री कृष्ण तपस्या के भोक्ता हैं, इसका अर्थ है यदि हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कष्ट उठाते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। तपस्या का वर्णन भगवद गीता के 17वें अध्याय में हुआ है, क्या समझे? भगवद गीता के 17वें अध्याय में हुआ है, जिसमें बताया गया है कि तपस्या शरीर मन तथा वाणी इन तीन वस्तुओं के द्वारा होती है। भगवद गीता के ज्ञान का बारंबार अभ्यास करना भी तपस्या कहलाता है, क्योंकि भगवान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पोता मद भावम आगता, अर्थात बहुत से लोग इस ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर मेरे धाम में आ चुके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भी है तथा सर्वश्रेष्ठ तपस्या भी है। भगवद गीता को ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं और भगवद गीता को क्या ज्ञान तपस्या भी कहते हैं। हाँ, इसलिए शांति प्राप्त करने का प्रथम सूत्र यही है कि भगवद गीता के ज्ञान को हृदयंगम किया जाए। अब दूसरा सूत्र है क्या, दूसरा सूत्र क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात ये जानना कि श्री कृष्ण समस्त देवताओं के सहित जीवों के ईश्वर हैं। इस विषय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण माया के स्वामी हैं, जबकि जीव माया के कठोर नियमों के परवश है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की माया ब्रह्मा तथा शिव जैसे ईश्वरों को भी नचाती है, इसीलिए श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात महेश्वर हैं। इस सत्य को स्वीकार करने से हम स्वतः श्री कृष्ण की शरण लेते हैं ताकि हम उनकी माया से मुक्त हो सकें। शांति प्राप्त करने का दूसरा सूत्र यही है कि श्री कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार किया जाए। तीसरा सूत्र है सुहृदम सर्वभूतानाम, अर्थात श्री कृष्ण समस्त जीवों के हितैषी हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की सेवा से सभी जीवों की सेवा स्वतः हो जाती है, समस्त जीवों की अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से वृक्ष के तने शाखाओं उपशाखाओं पत्तियों फूलों तथा फलों का अपने आप सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा से संपूर्ण जगत का कल्याण स्वतः होता है। और दूसरा उदाहरण है क्या, जिस प्रकार भोजन को उदर में डालने से शरीर के समस्त अंगों में शक्ति तथा पुष्टि आ जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा से समस्त जीवों की भलाई स्वतः हो जाती है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है वह शांति प्राप्त करता है, परंतु बहुत से तथाकथित महात्मा लोग इस बात पर ध्यान न देकर जीवों की भलाई की अलग अलग योजनाएं जैसे निर्धनों को भोजन तथा वस्त्र वितरण आदि बनाते हैं। वे कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वे वृक्ष के मूल का सिंचन न करके वृक्ष के पत्तों का सिंचन कर रहे हैं। वृक्ष के पत्तों का सिंचन करने से पत्ते कभी भी हरे नहीं होंगे, परंतु यदि वृक्ष के मूल का सिंचन किया जाए तो वृक्ष के पत्ते स्वतः हरे हो जाएंगे। अतः प्रभुपाद के शब्दों में इस श्लोक का निष्कर्ष है, एकमात्र भक्ति योग मानव को शांति प्रदान कर सकता है। यदि मानव समाज में प्रतिदिन भगवद्गीता का श्रवण या अध्ययन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आयोजित किया जाए तो मानव समाज में शांति की स्थापना हो सकती है, अन्यथा सारे प्रयास व्यर्थ हैं। ये लेख था भगवद दर्शन जो छपा था, तो इस श्लोक में भगवान ने तीन शांति के सूत्र बतलाए हैं। पहला सूत्र है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या के भोक्ता भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ तपस्या होनी चाहिए, अपने भोगने के लिए नहीं, अपने भोगने के लिए नहीं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, क्यों? अपने भोगने के लिए, ईश्वर बनने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं तपस्या की उसने, इसलिए उसको शांति नहीं मिली, है ना। लेकिन शांति मिली ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज ने तपस्या की, क्यों? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, फिर सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के कृष्ण नियंता हैं। कैसे? माया, जो कृष्ण की शरण में नहीं आता है उसको माया न चाहती है, है ना। तो सर्वलोक महेश्वरम, कोई भी उनकी माया से छोड़ नहीं सकता। ना तदस्ती पृथिव्याम वा दिव्य देवेश वापणः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम देवी शास्त्र भिर्गुण। स्वर्ग में या देवताओं में या पृथ्वी में कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हो। जब तक कोई कृष्ण की शरण ना ले तब तक है। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदिते। गुणमयी माया, जो तीन गुणों की जो माया है मेरी, वो दैवी है, जो केवल मेरी शरण में आते हैं वही इस माया से छोड़ सकते हैं, है ना। तो सर्वलोक महेश्वरम का ये मतलब है, है? और तीसरी बात क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद हैं, है ना। अगर आपने कृष्ण को महेश्वर मान लिया तो इससे बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण जो है सब लोगों के ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, तो लगता है कि सबको जो है काम कराते होंगे, घोड़े की तरह काम कराते होंगे, घोड़े की तरह, गधे की तरह काम कराते हैं कृष्ण। नहीं, जो कृष्ण का दास बन जाता है पता है कि वो कितना सुखी होता है, कितना सुखी होता है, कृष्ण उसके सेवक बन जाते हैं। उदाहरण अर्जुन है, अर्जुन कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या है कि कृष्ण खुद अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन उनको आदेश दे रहे हैं, है ना। ये है तो सुहृदम सर्वभूतानाम का मतलब ये है कि ये मत सोचना कि अगर आप कृष्ण के सेवक बन जाओगे तो आपको जो है घोड़े और गधे की तरह दौड़ना भागना पड़ेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। हाँ, तो अर्जुन कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव के साथ कृष्ण इस प्रकार के हितैषी हैं, है ना। तो कृष्ण की सेवा में बहुत आनंद है, कृष्ण की सेवा में बहुत आराम है, है? अपवर्ग पावर्ग नहीं है, है ना। ये भौतिक संसार पावर्ग है। पावर्ग का मतलब क्या है? पांच अक्षर हैं पावर्ग में, पा फा बा भा मा। पा का मतलब पराभव, है ना। पा का मतलब है पराभव, कि हर कार्य में आपको असफलता प्राप्त होती है। कृष्ण की सेवा में नहीं होता, लेकिन इस भौतिक संसार में जब कोई व्यक्ति माया को भोगना चाहता है तो उसको पराभव, असफलता प्राप्त होती है, पराभव पा। और फा का मतलब फेनिल, फेनिल का मतलब परिश्रम, जैसे मुंह में झाग आता है ना, फेनिल इसका मतलब है परिश्रम। बहुत ही संसार में माया को भोगने में जीव को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कृष्ण की सेवा में कोई परिश्रम नहीं है। जितना भी सेवा करो उन्हें कोई थकान नहीं आती है। जैसे हनुमान जी बहुत आसानी से पर्वत का शिखर ले आए, लक्ष्मण जी मूर्छित है तो उनको जो है औषधि लाने के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत का शिखर ले आए, कोई परिश्रम नहीं। समुद्र पार कर गए, लंका में आग लगा दी, कोई परिश्रम नहीं। तो भगवान की सेवा में कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन माया की सेवा में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पराभव भी और परिश्रम भी, पाफा। और बा का मतलब क्या? बंधन, बंधन। आप जिस तरह से काम करना चाहते उस तरह से नहीं कर पाओगे, है ना, और जिस तरह से काम नहीं करना चाहते उस तरह से करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि ऐसे होना चाहिए तो ऐसे नहीं होता है, और आप चाहते हैं कि ऐसे होना चाहिए तो ऐसे नहीं होता, और आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए तो ऐसे ही होता है, है ना, बंधन है। पाफा बा, इसके बाद भा, भा का मतलब क्या है, भय। माया की सेवा में भय ही भय मिलता है हमेशा, है ना, और कृष्ण की सेवा में किसी प्रकार का भय नहीं है, निर्भय। भक्त लोग हमेशा निर्भय रहते हैं, भा। और इसके बाद माँ, माँ का मतलब मृत्यु, माया की सेवा में मृत्यु प्राप्त होती है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का चक्र हमेशा चलता रहता है, और कृष्ण की सेवा में मृत्यु नहीं है, अमृत है। स्वमृतत्वाय कल्पते, है ना, तो सुहृदम सर्वभूतानां, कृष्ण सब प्राणियों के सुहृद हैं, है, सुहृद का मतलब यही है कि जो भी जीव उनकी शरण में आता है तो कृष्ण उसको अपना पद दे देते हैं, अपने समान बना लेते हैं, सुहृद है। देखो वैकुंठ में जितने भी सेवक हैं भगवान के, सब भगवान के समान रहते हैं, मतलब अंतर नहीं देख पाओगे आप भगवान में और उनमें, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। ऐसा कभी होता है इस भौतिक संसार में? कोई भी मालिक जो है अपने बराबर कभी नहीं मानता अपने नौकर को, इस संसार में कोई भी मालिक जो है अपने बराबर नौकर को कभी नहीं बनाता, लेकिन भगवान अपने सेवकों को अपने बराबर बना देते हैं। सुहृदम, भगवान इतने सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो इस प्रकार से जान करके उसको शांति प्राप्त होती है। तो जानना है भगवान को तीन प्रकार से। अब कोई प्रश्न है किसी का? इनका प्रश्न है कि पराभव का मतलब क्या बताया? पराभव का मतलब असफलता, कार्य में असफलता प्राप्त होती है, है ना, बार बार असफलता प्राप्त होती है। इस भौतिक संसार में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो सफलता पाने के लिए पहले उसको असफल होना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है असफलता ही सफलता की कुंजी है, है ना, फेलियर इज द की टू सक्सेस, है। तो ये भौतिक संसार का नियम है, आध्यात्मिक जगत का नियम नहीं है। भगवान की सेवा में कभी असफलता नहीं प्राप्त होती, है ना, तो ये अंतर है। तो जैसे कि प्रभुपाद ने 40 रुपए से शुरू किया था ये आंदोलन कृष्ण भावनामृत का, और 10 साल में क्या हुआ, 40 करोड़ से ऊपर संपत्ति हो गई, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यापार नहीं हो सकता कि 40 रुपए से शुरू किया जाए और 40 करोड़ हो जाए 10 साल में, कैसा कोई व्यापार हो सकता है? नहीं हो सकता। 40 रुपए से 40 करोड़ हो जाए 10 साल में, हो सकता है कोई व्यापार? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण भावनामृत का व्यापार इस प्रकार का है, हैं, तो सफलता जो है प्राप्त होती है। जो पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो थोड़े से परिश्रम से उनको बहुत फल प्राप्त होता है, है ना। लेकिन भौतिक संसार में व्यक्ति परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है और फल मिलता है थोड़ा सा, है ना। कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, है ना। तो भौतिक संसार में लोगों को परिश्रम ही परिश्रम करना पड़ता है और फल क्या मिलता है? खाली परिश्रम और कुछ नहीं, है ना। भौतिक संसार में लोग परिश्रम करते हैं और आशा करते हैं कि हमें बहुत फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। जैसे कि माँ बाप हैं, बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन कृष्ण की शिक्षा नहीं देते हैं, तो क्या होता है आगे चल करके? वो लड़का जो है उन्हीं माँ बाप की अवज्ञा करता है, उन्हीं माँ बाप को छोड़ देता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनका अपमान करता है। जिस बच्चे को उन्होंने खूब परिश्रम करके पाला और पढ़ाया लिखाया, लेकिन कृष्ण का कोई उपदेश नहीं दिया, तो वही बच्चा जो है आगे चल करके पढ़ लिख करके अच्छा जो है बन जाता है, और उन्हीं माँ बाप को जो है क्या करता है, अपमानित करता है। तो ये है परिश्रम, इस भौतिक संसार में ये है पराभव, परिश्रम और पराभव। इतना परिश्रम किया और पराभव। पराभवस्तावदबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। तो तब तक पराभव होता ही रहेगा। पराभव असफलता है ना, हार। पराभव का मतलब हार। तब तक आप हारते ही रहोगे जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करते। तो जब तक कृष्ण तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक ये पावर्ग बना रहेगा हमेशा। पा का मतलब पराभव और फा का मतलब फेनिल यानी परिश्रम, और बा का मतलब बंधन, भा का मतलब भय और मा का मतलब मृत्यु। ये पांचों के पांचों जो है लगे रहेंगे। और जब कृष्ण के शरण में जाते हैं, कृष्ण को तीन प्रकार से समझ लेते हैं कि कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं, परम आराध्य देव हैं कृष्ण, और कृष्ण ही परम ईश्वर हैं या स्वामी हैं, और कृष्ण ही परम सुहृद हैं, सखा हैं, मित्र हैं, हैं? तो फिर पावर्ग फिर नहीं रहेगा। पावर्ग से आप मुक्त हो जाएंगे। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है शांति का अनुभव कैसे किया जा सकता है। शांति का अनुभव किया जा सकता है कैसे, जब आपको डर ना रहे, ठीक है ना। जब आपको डर ना रहे, आप जब निर्भीक हो जाए। अभी हम सत्य संशुद्ध दैवी संपत्ति है ना। तो इस संसार में हर व्यक्ति को भय बना हुआ है, सर्वत्र भय है, और सब समय भय है। हर जगह भय है और हर समय भय है ना। तो उस भय से जब मुक्त हो जाए तो उसको कहते हैं शांति, है ना। और शांति का मतलब है डरा हुआ व्यक्ति। जैसे चोर होता है, हैं? तो वो अशांत रहता है, वो कहीं भी रहे उसको डर बना रहता है कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो वो अशांत है, है कि नहीं। अशांत से कुदा सुखम, जब तक अशांत है तब तक सुख कैसे हो सकता है उसको। चोर जो है उसको हमेशा डर बना रहता है दिन रात कि पुलिस मुझे पकड़ रही है, मुझे पकड़ रहेगी, मुझे पकड़ रही है, मुझे पकड़ लेगी, है। अब वो चाहे कितना भी खाए, चाहे जितना भी बढ़िया सोए खाए सोए, लेकिन वो नहीं सुखी हो सकता है कि उसको डर बना हुआ है, है कि नहीं। तो शांत का मतलब यही है कि जब व्यक्ति का डर समाप्त हो जाता है, भगवान के चरणों में शांति प्राप्त होती है। भगवान के चरण कहलाते हैं अभय चरणारविंद, है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, है ना। तो भगवान के चरणों को अभय का स्थान कहा जाता है, शांति, जहाँ की भय समाप्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, हमेशा दुख और दोष देखना किसमें, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी में हमेशा, है ना। तो ये जो है भय है, ये समस्या है। जब तक ये समस्या है तब तक सुख कैसे मिल सकता है। आजकल का जो विज्ञान है वो इस समस्या को हल नहीं कर रहा है, बाकी और कई प्रकार के सुख के उपाय निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन जब तक जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी इन समस्याओं को हल नहीं किया तब तक कैसे आप सुखी हो सकते हो, हैं। तो विज्ञान ने बहुत सुख के लिए बहुत साधन दे दिए। देखो ये बिजली के बल्ब चल रहे हैं, ये पंखा चल रहा है, कूलर है, फ्रिज है ना, और मोबाइल है, टेलीफोन और टेलीविज़न, है ना, क्या क्या चीज़ें दी हैं। लेकिन जब तक जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी की समस्या बनी हुई है तब तक कैसे सुखी हो सकता है कोई व्यक्ति, है ना। ये केवल एक बहलावा है। जैसे बच्चों को कोई जो ना भुलावा देता है, फुसलाता है ना। तो इसी प्रकार से, है ना, जैसे कि कुछ बच्चे थे जिनको कुछ ऐसी बीमारी थी जिससे कि वो मतलब कुछ समय के बाद मर जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को जो है ना बहलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था कि वो उनको पार्क में ले जाए और उनको खिलाए, उनको जो है मतलब इस प्रकार से मनोरंजन करे। तो वे बच्चे जो है ना पार्क में इकट्ठे होकर के बैठ गए और फिर आपस में बातें करने लगे, बोलने लगे कि अरे ये आदमी तो हम लोगों के वो केवल धोखा देने के लिए आया है, हम लोगों को तो ऐसी बीमारी है कि हम लोग तो जिंदा रहेंगे नहीं, हम लोग तो मर जाएंगे, ये हम लोगों को बहलाने के लिए हैं यहाँ पार्क में लाया है और ये सब खेल के साधन दिखला रहा है कि हम लोग खेलें और इस बात को भूले रहे हैं, ये तो हम लोगों को मूर्ख बना रहा है। उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग हैं, हम लोगों को जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी की समस्याएं बनी हुई हैं, है ना, और ये वैज्ञानिक लोग हमें क्या कर रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं है? इन चीज़ों में कि तुम जो ना सुख का अनुभव करो है? ये सब चीज़ें खेलने की मनोरंजन की चीज़ें दे रहे हैं है? टेलीविजन है कि नहीं, तो ये सब जो है ना अज्ञान है, इससे जो है केवल अज्ञान ही अज्ञान बढ़ता है और कुछ नहीं। लेकिन जब इस समस्या का जो असली हल है कृष्ण भावनामृत, तो क्यों ना ग्रहण किया जाए, इसकी चिकित्सा अगर है तो चिकित्सा क्यों ना कराई जाए, ऐसे बहलाने से क्या फायदा। एक व्यक्ति है अपनी बीमारी की चिकित्सा करा रहा है ना, तो दूसरा व्यक्ति अपनी बीमारी की चिकित्सा नहीं करा रहा है बल्कि और मनोरंजन करता रहता है अपने को भुलाने के लिए कि मैं भुला रहा हूँ, तो कौन सा अच्छा है, जो चिकित्सा करा रहा है वो अच्छा है ना, वो गंभीरता से चिकित्सा करा रहा है, वो नहीं सब मनोरंजन के चक्कर में रहता है कि नहीं नहीं मुझको कोई बीमारी नहीं है, मैं सुखी हूँ। ऐसे ऐसे कोई सुखी थोड़ी होता है। हमने उदाहरण दिया खरगोश का कि शेर के सामने खरगोश आंखें बंद कर लेता है कि नहीं नहीं कोई शेर नहीं है, कोई डर नहीं है, तो क्या होता है, मर जाता है। और खरगोश चाहे तो अपनी जान बचा सकता है, कैसे, खरगोश इतना तेज भागता है कि शेर नहीं पकड़ पाएगा उसको, है ना। तो मनुष्य जीवन में उपाय है बचने का, आपके पास ऐसी योग्यता है कि आप बच सकते हैं, लेकिन आप मनोरंजन में, वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के मनोरंजन के साधन बनाए हैं कि आप भूले रहो, कृष्ण का भजन ना करो और अपने को सुखी समझो, है ना। इस प्रकार के अज्ञान में जो है सब के सब जो ना लोग डूबे हुए हैं। जो भगवत गीता है अज्ञान से निकालने के लिए है, प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन जो बनाया है अज्ञान से निकालने के लिए है। आप सुखी नहीं हैं, आपको सुखी होना है, तपस्या, यज्ञ और तपस्या, इन उपाय से आप सुखी हो सकते हो, कृष्ण को अगर प्रसन्न करोगे इस प्रकार से, तो सुख प्राप्त करने का जो है ये उपाय है कि कृष्ण को आप जो है सुख प्रदान करो। कृष्ण को प्रसन्न करने से आपकी सब समस्याएं सुलझेंगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो ये पूरा निष्कर्ष है, भगवद गीता का भी निष्कर्ष कहा जा सकता है इसको, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। और तीन बातें याद करना कोई कठिन नहीं है, है ना, तीन बातें जो है बड़ी आसानी से किसी बच्चे को भी याद कराई जा सकती हैं, इसलिए गीता जो है ना बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत सरल उपदेश है। तीन बातें याद करो, तीन बातों से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, बस आपका पूरा जीवन जो है ना सफल हो जाएगा। तीन बातें अपने कंठ में बांध लो, अपने गले में बांध लो, इस श्लोक को अच्छी प्रकार से याद कर लो, इसमें और मनन करो, और मनन करो, हाँ भगवान जो कह रहे हैं इसी से आपको जीवन की पूरी सफलता प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु शिला प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा के, श्री श्री गोणिताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।